आज तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
पवन चले उड़ जाना रे पगले हो।
पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना
है, समय चूक पछताना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली।
चारों तरफ से आग लगा दी ए हो।
चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होरी
हे, फूंक दई रे जैसे होरी। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।
ओम शांति। तो आज हम सब आर्ट ऑफ वैराग्य अंतर्गत देह से कैसे वैराग्य होता है, देह से वैराग्य कैसे लाया जा सकता है। तो देह से वैराग्य लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम चिंतन करते हैं और सुनाते हैं आपस में, तो हम सबको भी फायदा होता है। तो उसी सिलसिला में आप सबके साथ हमने जो भी थोड़ा वो चिंतन किया है वो सबको सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज सारी संसार की जो मनुष्य आत्माएं हैं, देह के माध्यम से ही संसार में सफर करती है। अगर देह नहीं हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसीलिए देह के आधार से आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग तक बाट बजाती है। हर एक आत्माएं यूनिक एक्टर्स है, सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट प्ले करती है ये विश्व रंग मंच पर। तो समय के दरमियान में सतयुग से कलयुग तक तो हम सब आ ही जाते हैं, इसके बाद ही स्वयं परमात्मा पिता आकर के हम सबको बॉडी के बारे में, देह सारी संसार के मनुष्य आत्माएं टोटल बॉडी में ही फंस गई है। और बॉडी में इतना ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण से आत्मा पंछी उड़ नहीं पाती है और चारों तरफ दुख अशांति ये टेंशन तनाव की जो बादल मंडराने लगती है। और सारी संसार के मनुष्य आत्माएं आज चारों तरफ दुख अशांति टेंशन तनाव के तनाव से ग्रसित है। तो इसका मतलब यही है, जो देह हम सबको सुखों के लिए मिला था अभी इस घड़ी में आकर के दुखों का कारण बन गया है। तो दुख भी इतनी ज़्यादा है कि सारी दुनिया में कहते हैं 38 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन हो चुका है। तो इसका जो प्रकोप है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इसीलिए बाबा, तो हम सबको देह के बारे में, आत्मा के बारे में इतना अच्छा नॉलेज दे करके हम सबको सहज रूप से देह के भान से मुक्त करते हैं और आत्मा को उड़ता पंछी बना देते हैं। तो आत्मा उड़ता पंछी बनती है तो संसार की सभी आत्माओं को देख करके दुख अशांति टेंशन में जो पीड़ित है उनको देख करके दया रहम क्षमा की भावना जगती है। और हम सब भी सोचते हैं कि हमारे जैसा सुख, हमारे जैसा शांति और हमारे जैसा खुशी सबको मिले, तो तो इसी भावना से हम अमृत वेले से रात तक ब्राह्मणों का ये धंधा ही है कि सबको सुख देना, सबको शांति देना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन, शुद्ध वाइब्रेशन, शक्तिशाली वाइब्रेशन दे करके विश्व कल्याणकारी के टाइटल में स्थित होकर के संसार में ये वाइब्रेशन पहुँचाने का काम होता है। तो इसीलिए आज हमारा देह, तो बाबा ने बोला हीरा तुल्य तो है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस बातों को ठीक रीति से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ब्राह्मण भी कई बार इसी देह रूपी मिट्टी में फंसे रहते हैं। निकलने की ट्राई तो सब करते हैं, कोशिश तो सबकी जारी है, लेकिन कोशिश कब जाकर के सक्सेस होता है हर ब्राह्मण अपने लिए एक्सपेरिमेंट करता है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में तो इस देह के लिए कई सारे टाइटल दिए गए और समय समय पर हर व्यक्ति ने इस बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताए। तो उस दिन तो डॉक्टर सचिन ने हम सबको कई प्रकार के पॉइंट्स सुना करके बहुत सारी बातों से हम सबको वैराग्य दिलाने की बातें तो हो चुकी है, फिर भी हमने सोचा कि सेम टॉपिक अगर होता है, पॉइंट होती है तो अच्छा नहीं लगता है, फिर भी थोड़ा ढूंढ करके तलाश करके हमने अपने तरफ से निकाले हैं। तो ये देह के लिए ऐसा वैराग्य स्मृति आ जाए कि ये देह नश्वर है, नश्वर माना विनाशी है, और आत्मा के लिए तो कहा जाता है कि ये देह अजर, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो इसका तीनों बातों में बॉडी इसके अपोजिट है, देह भी विनाशी है, अमर कभी नहीं रह सकता है देह, और अविनाशी भी नहीं है। तो ऐसे बॉडी पर हम निवास करते हैं और ये नश्वर बॉडी के साथ हमारा इतना गहरा संबंध है, और देह में रहते रहते ऐसे लगने लगता है कि हम यहाँ के ही परमानेंट हैं और यही बॉडी ही हमारा सब कुछ है और इसमें चिपके रहते हैं। तो हमें हर दिन ये स्मृति आनी चाहिए, देह नश्वर है, तो इसमें रह करके हमको अपनी इंतजाम करनी है, क्योंकि कभी भी नाश हो सकता है, क्योंकि नाश होने के लिए इसको कुछ भी टाइम नहीं लगता है। इसीलिए हमको हर दिन ये स्मृति बनाए रखना है कि देह नश्वर है। दूसरा हमने निकाले थे ये देह क्षण भंगुर है, कभी भी ये विनाश हो सकता है, कभी भी ये है ना क्षण भंगुर माना कभी भी किस टाइम नहीं है, इसका फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी ये क्षण भर में भंग होने वाला है और कभी भी हो सकता है, और किसी ने लिख के नहीं लाया है कि मैं इतने साल के लिए संसार में हूं। तो जाने का डेट तो ऑलरेडी सबके रिजर्वेशन में है, लेकिन कब वो मर्ज होगा वो पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमको इसको क्या समझना है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी ये हमको धोखा दे सकता है। इसीलिए ये क्षण भंगुर बॉडी में रह करके हमको उसी अनुसार से अपनी इंतजाम करना है और ये सोच को बनाए रखना है। तो ये स्मृति आती है तो हमको डिटैच होने में इजी होता है, नहीं तो सारे दिन भर कोई भी संकल्प अगर मन में बुद्धि में नहीं चलते हैं तो फिर ये एक तरफा हो जाता है, फिर ज्ञान का पड़ला उतना भारी नहीं हो पाता है, देह कॉन्शियस का पड़ला ज़्यादा भारी होने लग जाता है। तो इसीलिए हम बीच बीच में क्या सोचेंगे कि यह देह क्षण भंगुर है। तो यह देह तीसरे में निकाले थे, यह देह छीछी है, बाबा भी मुरली में कई बार कहते हैं कि ये छीछी शरीर है। तो ये छीछी शरीर माना गंदगियों से भरी हुई शरीर है, और शरीर में तो सब कुछ है, और मनुष्य आत्माएं आज सबसे ज्यादा दुनिया में जो गंदगी फैलाते हैं उस शरीर के द्वारा ही निकले हुए गंदगी है संसार में। इसीलिए इस शरीर को क्या समझना है, छीछी बॉडी है। तो ये स्मृति अगर मन में आती है तो हमको तुरंत ही किनारा होने में सहज हो जाता है। तो चौथा में हमने निकाले थे कि यह दुर्गंधों की फैक्ट्री है ये विद्या दुर्गंधों की फैक्ट्री है। तो यहाँ पर अगर एक एक कर्म इंद्रियों को देखा जाए तो टोटल एडी से चोटी तक पूरे स्मेल ही शुरू निकलता है इस बॉडी से। अगर चार पाँच दिन स्नान न किया जाए तो व्यक्ति नजदीक भी नहीं बैठ सकता है। दो तीन दिन तक मुंह धुलाई नहीं करेंगे और मुंह साफ नहीं करेंगे, जीभ साफ नहीं करेंगे तो इतने जोर से दूर दूर तक स्मेल छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए हम इसको भी क्या समझ देंगे, ये दुर्गंधों की ये फैक्ट्री है। तो यह स्मृति आते ही हम लगेगा कि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, थोड़ी सी भी हमने आनाकानी की है तो स्नान पानी से लेकर के हर चीज़ में ठीक से करेंगे नहीं तो ऐसा लगता है। तो ये हम सबको याद रहे कि इस चीज़ में हम बसे बैठे हुए और इतने सारे फंक्शन इसके साथ है, तो इसीलिए हम यो इसको बार बार संकल्प में लाते रहेंगे। तो आगे हमने निकाले थे कि ये देह धोखेबाज है देह से ही संसार में मनुष्य आत्माएं धोखा खाती रहती है। इतना धोखा मिलता है देह से, कभी स्वयं के देह से मिलता है, कभी दूसरों के देह से भी मिलता है। तो धोखा खाने के बाद लोग सोचता है कि मंजिल तक तो पहुंचना चाहिए था, क्या लक्ष्य लेके आए थे, क्या उद्देश्य लेके आए थे, लेकिन इस देह ने कैसे बहुरूपी धारण करके आत्माओं को फंसा देती है और आत्मा फंस जाती है और आत्मा तड़पने लगती है और बाद में समझ में आता है कि मैं अच्छी रीति से फंस चुका हूँ, कि कोई निकलने का चारा नहीं है। अब कई सारी आत्माओं को देखते हैं हम सब और वो पूरे आजीवन अब पश्चाताप की अग्नि में जलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचती और बची नहीं है किसी के लिए भी। तो इसीलिए हम ये समझेंगे कि देह से कभी भी धोखा स्वयं के लिए भी हो सकता है तो दूसरों के साथ दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो हम अलर्ट रहेंगे ये संकल्प करके कि देह धोखेबाज है। तो आगे हमने निकाले थे ये देह परिवर्तनशील है। बचपन से हम एक दिन के बच्चे थे तब से लेकर के करते करते आज हम कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 100 तक भी पहुंच गए। परिवर्तनशील है, जो कल था आज नहीं है और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। अब हम सब जाकर के 10-12 साल के बच्चे तो नहीं बनेंगे ना स्टेशन से तो हम फिर जाकर के रिटर्न नहीं होगी हमारी, प्लेटफॉर्म से अपना ट्रेन छूट चुका है, अभी तो आगे वन बाई वन निकलना ही है और वो उधर से लेने आ रहा है, हम उससे मिलने जा रहे हैं और एक एक दिन हमारे माइनस के खाते में है। तो इसीलिए दुनिया में कहा जाता है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो जो पहले धोती लगा के चलता था बाद में वही धोती झोला बन जाता है और ये घुटने सिंह जैसे हो जाते कहते हैं धोती झोला बन गया और ये घुटने सिंह बन गए और उसको आंगन तक लाने के लिए 4-5 लोगों की सहारा लेनी पड़ती है। कहते हैं आंगन में प्रदेश हो जाता है उसके लिए और सारे जीवन के अरमाने मन में पाल के रखते हैं। तो वो भी बहुत बड़ा मन में रहता है कि पूरा जीवन अच्छे बुरे जो भी कर्म हुए हैं पूरे जीवन भर पश्चातापी होती है दुनिया के इंसान के लिए। तो ऐसे अच्छे कर्म, महान कर्म, दिव्य कर्म तो सबके नहीं हो पाते हैं। तो ब्राह्मण के जीवन में भी यह न हो जाए, क्योंकि आगे तो सबके जीवन में इस प्रकार के आक्रमण तो होना ही है। समय परिस्थिति अनुसार हर व्यक्ति आगे बढ़ता है, कभी बीमारी की चपेट में आता है तो कभी बूढ़े काल की चपेट में आ जाता है और मनुष्य आत्माओं के दिन ऐसे सोचने के ही रह जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करना चाहिए था। कभी ब्राह्मणों के मुख से भी निकलते हैं अच्छे पुरुषार्थ करने के लिए आए थे, अच्छी स्थिति अवस्था बनाने के लिए आए थे, लेकिन आज ये हालत में जा करके भी स्थिति नहीं बन पाती। तो ब्राह्मण के लिए सबसे ज़्यादा पश्चाताप की बातें यही हो जाती है। तो ये आगे निकाले थे हमने यह पुरानी चत्ती लगी हुई शरीर है, तो इतनी ज्यादा चत्तियां जैसे हॉस्पिटल में जहाँ थिएटर में दिखा जाता है कि ऊपर का मांस काट के नीचे कहीं भरपाई की जाती है, जैसे कि कसाई खाने में जो डॉक्टर ऊपर के मांस कहाँ फिलअप करना होता है करते रहते हैं, तो इसीलिए जो इसके चपेट में आए हैं उनको तो पता है, उस समय तो संपूर्ण वैराग्य आ जाता है देह से। एक बार शुरू में ज्ञान में आते आते हमारी काकी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनकी स्थिति अवस्था और उसको देख करके ऐसा लग रहा था, अभी तक भी स्मृति में लाते हैं तो बहुत बड़ा वैराग्य उससे आता है। देह के साथ ऐसे बर्ताव होती है दुनिया में, बचाने के लिए, उसको आगे खींचने के लिए आत्माओं को क्या नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए ये चत्ती लगी हुई शरीर है, तो इसको इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आकर्षण और इतनी ज़्यादा अटैच होने की इतना कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीज़ को हम इस स्मृति में अपने को सजग रखेंगे कि यह चत्ती लगी हुई शरीर है। तो आठ में हमने निकाले थे यह शरीर तो नर कंकाल है, आठ मासों का पुतला है, ये नर कंकाल है। अगर हम कहीं घूमने निकले अभी और वो एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर में मांस न हुआ हुआ हाड़ मासू का है ना कंकाल बीच में खड़े हो जाए, कोई व्यक्ति वहाँ रुक सकता है? भागदौड़ मच जाती है। तो यही फरमा तो इसमें हमारे बॉडी में लगी हुई है। तो सन्यासियों के लिए दिखाए जाते हैं कि जो जूनियर सन्यासी होते हैं तो उनके गुरु लोग उनको एक तरफ बॉडी फुल बॉडी देते हैं, फुल बॉडी का चित्र, दूसरी तरफ उसको नर कंकाल वाला चित्र देते हैं और उसको वैराग्य दिलाने के लिए बार बार स्मृति में लाने के लिए उसको होमवर्क देते रहते, यथार्थता ये है तुम्हारी बोल के, अपनी तथा दूसरों की बड़ी इसी हिसाब से बना हुआ है। तो उसमें जैसे कि डर भी पैदा होती है उससे, तो भय जैसे लगता है। इसीलिए हम बाहरी रूप से तो है ना, जगदीश भाई बोलते हैं कि उनके क्लास में बहुत अच्छा पॉलीथीन का जैसे कि बैग है ना, उसके ऊपर सब कुछ शरीर की गंदगी डाल करके आपको थमा दिया जाए तो आप उसको लोगे क्या? तो इसी रीति से बाहर से एक एमएम का छिलका लगा हुआ है और भीतर में सब कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है। छोटी सी भी चोट लगती है तो कुछ होती है, खरस आता है तो बाहर का चमड़ी हट जाती है तो कैसे खून बहना शुरू होता है, दो दिन के बाद में वो है ना सड़ जाती है, स्मेल मारने लगता है। तो इस प्रकार के शरीर के साथ हमारा इतनी लंबी जर्नी हुई है। तो बाबा ने तो हम सबको इस प्रकार से स्मृति दिलाए हैं कि हर दिन बाबा इस शरीर के लिए बहुत प्रकार की बातें सुनाते रहते। तो उसके बाद में हमने निकाले थे ये देह, तो कहते हैं ढलती हुई सूरज की समानी है, क्योंकि सूरज जब 12 बजे के बाद कभी भी ढक सकती है, बादल से छिप जाती, बादल में छिप जाती है, कभी तूफान कभी है ना, तो बहुत कुछ के कारण से बाद वो छिप जाती है। इसी रीति से यह देह भी ढलती हुई सूरज के समान है, कभी भी अस्त हो सकती है। तो इसीलिए हमको इसमें भी अलर्ट रहना है कि यह शरीर हमारी इस हिसाब से चलती है। और इस उम्र में लोग बोलते हैं कि जो काम है जैसे काम है जितना जल्दी हो सके निपटाओ बोलते हैं, क्योंकि वो ढलता सूरज है, कभी भी जा सकता है। इस प्रकार से लोग तैयारी भी करते हैं, इंतजाम भी करते हैं। और लौकिक दुनिया में तो थोड़ा सा पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो इसी संकल्प से वो भी अपनी जो प्रॉपर्टी अपनी जो जायदाद है एक बच्चों को ट्रांसफर कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, क्योंकि कल क्या ना हो जाए, क्योंकि हजारों लोग सोते हैं तो सुबह जागते ही नहीं, हजारों लोग जागते हैं तो सुबह रात तक खटिया में नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए हम ये समझेंगे कि ढलती सूरत के समान ही हमारा जीवन। और 11 में निकाले थे हमने ये मधुमक्खी का छत्ता है, जब मधु रूपी आत्मा है ना मुख्य रूपी आत्मा ये बॉडी से निकल जाती है तो जैसे कि देखने में कोई अच्छा नहीं लगता है और उसमें चींटियां लगने लग जाती है, बच्चे कुछ जो माल होता है मधु खाने के लिए। तो ये देह में भी अगर आत्मा निकल जाए ना, एक दो दिन ऐसे रखना पड़े गांव के हिसाब से, कीड़े चलना शुरू हो जाते हैं, चारों तरफ से घूमने लग जाते, इसी हिसाब के कीड़े आने लगते, और कहीं इधर उधर पड़ जाए तो कुत्ते उसकी टांग खींचना शुरू कर देता है। और भी कई ऐसे प्राणी है, शरीर को छोड़ते ही नहीं है। तो इसीलिए हम ये समझेंगे, क्या समझेंगे, मधुमक्खी का सत्ता है। काट करके जैसे कि कौवे को खिला देते हैं क्योंकि उसको काम आ जाए, इस शरीर कोई काम का नहीं है बोलते हैं बाबा भी, क्योंकि प्राणियों के तो जैसे कोई चीज काम में आ जाता है कि चमड़ी हड्डियां जो कुछ कुछ हड्डियां भी जो जैसे कि फैक्ट्री में काम लगाते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, लेकिन ये मनुष्य का तो कोई छोटा ही नहीं। इसीलिए एक कहानी सुनी थी हमने, जो अशोक सम्राट थे, सभी जैसे कि अब्राहम लिंकन की तरह ही सबको रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना उनका जैसे कि जीवन का नेचर था, सबको सम्मान देते थे। और उनके साथ में आगे पीछे जो घूमने वाले जो सिक्योरिटी होते थे ना, उनको बुरा लगता था उनको ऐसी बात देख करके, और इतना बड़ा तुम सम्राट है, इतना बड़ा राजा है तुम, हर व्यक्ति कोई लल्लूपन जो भी मिले उसको तुम झुकना नमन कर रहे हो, कौन सी बड़ी अच्छी चीज है। तो उसके उन्होंने बोला था कि ये शरीर कोई काम का नहीं है और इसको झुकाने में क्या जाएगा, है ना। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसी नगर में कोई व्यक्ति की जो भी सर छोड़ा था तो उसके सिर को धड़ को अलग किया था, तो उसको अलग करके उसको पूरे गांव शहर में घुमाया कि कोई व्यक्ति इसको ले गया खोल के, तो पूरे गली गली में घुमाने के बाद सबने रिजेक्ट कर दिया कोई पकड़ के कहीं हम जेल में जाना न पड़े, ये कल से सड़ जाएगा, ये कोई काम का नहीं। पूरे राज्य को भर घुमाया, उस सिर का उस धड़ का कोई महत्व तो किसी ने नहीं दिया, सब है ना किनारा किए उस चीज को, इंसान के ना सिर को। लेकिन दूसरे दिन फिर दूसरी परीक्षण की गई थी, एक गाय के सिर को लेकर के पूरे राज्य में घूमने के लिए बोला था, जाते जाते कई सारे लोगों को काम का चीज था तो उन्होंने उस सिर को रख दिया था, उस धड़ को। तो फिर पूछा गया कि पशु प्राणी की तो देखो लोगों ने फटोफट ले लिया लेकिन इंसान का तो पूरे राज्य घुमा के लाने के बाद में भी किसी ने हाथ तक भी नहीं लगाया, लोग दूर से छींची कर देते थे उसको तो इसका मतलब ये सड़ने वाले शरीर, बिगड़ने वाले शरीर को हम जितना झुकाए, जितना नमन करें, सबको रिगार्ड दे, सम्मान दे, ये सबसे बड़ी महत्व की चीज है, ये हमारा यादगार बनता है। और सबको यही स्मृति में रहती है कि राजा बहुत अच्छा था, तो इसलिए अब्राहम लिंकन का भी जीवन में ऐसे दिखाते, जो एक बार नमस्ते करता था उसको दो बार करते थे, उससे डबल होना चाहिए उनकी अलग से रहती थी तो इसलिए शरीर को हम क्या समझेंगे। तो आगे हमने इसको निकाले थे तो ये पानी का बुलबुला भी कहा जाता है भक्ति मार्ग में, इस शरीर को, ये देह को, क्योंकि ये देह का जैसे कि आसमान से बारिश बहुत देर तक होती है, पानी जम जाता है तो पानी की बूंदें जहां गिरती है वहां फोड़ा निकलता है पानी का, और थोड़ी देर के बाद में दूसरा आकर के उसके ऊपर टूट पड़ता है तो वो है ना फट जाता है और दूसरा आ जाता है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में इसके लिए बहुत बोला है लोगों ने कि पानी का बुलबुला समान है ये जीवन, तो ये कभी भी है ना फटती है, कभी भी ये किनारा हो सकती है, कभी भी यह बुझ सकती है, ऐसा दिखाया है। तो इसीलिए इस जीवन के लिए हम सब कभी क्या समझेंगे, कभी भी एक के बाद एक निकलने वाले फड़े के समान संसार में हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, कल कौन था, आज कौन है, कल कौन रहेगा, इसलिए कालांतरशील संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन चलती रहती है, यहाँ पर परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। तो 13 में हमने निकाले थे ये पुरानी खाले शरीर, पुरानी खाल, बाबा भी मुरली में बीच बीच में बोलते रहते हैं, ये शरीर पुराना खाल है, इससे ममत्व निकालो, इससे ये तो सांप के समान है ना, जैसे कि डस्ती है ये, जैसे कि माया रूपी है ना सांप, डस्ती और हर मनुष्य आत्माओं को घायल करके रखी है। तो इसीलिए आगे हमने निकाले थे कि ये चलता फिरता ये मुर्दा खाना है। जगदीश है कि क्लास में आता है, ये चलता फिरता ये मुर्दा है। जैसे कि चल रहा है, आत्मा रूपी पॉइंट एक सेकंड में बाहर आ गई तो धड़ाम से जमीन में हो, लंबी नींद में चला जाता है। तो इसीलिए हम क्या समझेंगे, ये चलते फिरते ये मुर्दा मुर्दा है ये, जैसे कि जब तक है। जिस घड़ी आत्मा निकल जाती है, दुनिया में भी देखा है कि आत्मा निकलने के बाद में इस शरीर के अंदर में जो गरीबी है जीवन जीते हैं गाँव में, जो उसके उनके बाल में बहुत सारे जू वगैरह होते हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में जो भी पलायन होने लगते, क्योंकि खाने को कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो निकल निकल के जाते हुए कई बार हम लोग ने देखे, क्योंकि निकल जाती सब, उसको पता चल जाता है कि अभी यह निकलने वाला चूसने वाला कोई चीज है ही नहीं। तो कई बार देखा है ऐसे कुछ। इसीलिए बहुत बड़ी अंदर में वायरस होते हैं बॉडी छोड़ने के बाद में, बैक्टीरिया, तो उस सबको हम सबने पाल के रखी हुई है। तो इसके बाद में आगे निकाला है कि ये पापों का पिंड है, ये विकारों का पिंड है, ये बॉडी सारे विकार है ना, जितने भी बाबा ने बोला है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा देश न परत बिगड़ना वैमनस्यता दुश्मन, ये सब ये बॉडी के अंदर ही समाया हुआ है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये विकारों का पिंड है ये पिंड। तो इसीलिए इसको हम क्या समझेंगे कि इस प्रकार का ये चीज है हमारे पास में। तो इसीलिए ये बीच बीच में समझते रहेंगे तो फिर हम इस देह से मोह नष्ट होती रहेगी। तो देह से मोह नष्ट करने के लिए तो आगे हमने निकाले थे, ये देह के ऊपर में सारी दुनिया की नजर है आज विश्व ब्रह्मांड में, दुश्मनी भी बॉडी में ही होता है, जब तक आदमी जिंदा है तब तक सबके नजर होते हैं, डॉक्टर के नजर होते हैं, इनकम टैक्स वालों का नजर होते हैं, किडनैप करके ले जाने वालों के नजर होते हैं, है ना, ससुराल वालों का नजर होते हैं। उसमें जैसे कि दुनिया में तो तिलक फिर इसको कहीं पकड़ में ले जाए तो कहीं किडनी निकाल देते हैं, कहीं लीवर ही निकाल देते हैं, कहीं घुटने ही निकाल देते हैं लोग बिक्री करने के लिए, आंखें तो निकालते ही है। तो देह में जैसे कि घूमते रहते हैं, सारी दुनिया तो इसी के पीछे, विश्व ब्रह्मांड का अगर नजरिया देखे सारी दुनिया देह में टिकी हुई है। तो इसीलिए ये देह के लिए बाबा ने बोला, आत्मा समझोगे तो सारी दुनिया की दुश्मनी खत्म होगी, देह समझेंगे तो एक आपस में दुश्मनी बनती रहती है। तो आगे हमने निकाले थे जो हिसाब किताब का, जैसे कि क्या बोलते हैं, हिसाब किताब का फंदा है, अभी सारे हिसाब किताब इस बॉडी से ही निकलना है आगे। और छोटी सी भी दर्द होती है तो कितना बड़ा मुश्किल लगता है हर व्यक्ति को, इसीलिए 84 जन्म में हर जन्म में है ना, 63 जन्म में हर जन्म में हमने बहुत पाप किए, लेकिन सारा पाप निकालने का आधार यही बॉडी है, और जन्म में जो भी हुआ है तो लास्ट में इसके ऊपर ही टूट पड़ेगा सारा हिसाब किताब, और सब हिसाब किताब इसके ऊपर ही है आज। और हिसाब किताब माना थोड़ी सी दर्द पीड़ा इस बॉडी के साथ में इतनी ज़्यादा रहती है कि आत्मा थोड़ी सी भी कहीं फोड़ा होता है, फुंसी होता है, कहीं दर्द होता है, उस समय भगवान थोड़ी याद आता है। कोई सारी याद दिन रात याद आती रहती है। इसलिए जैसे कभी दांत दर्द होती है तो उस दांत से जैसे दर्द दुनिया में कुछ कोई हो ही नहीं सकता लगता है। कभी आंखों का दर्द होता है ना तो आंखों के जैसे दर्द तो दुनिया में किसी के नहीं हो सकते, एक एक चीज का हिसाब किताब। तो इसीलिए इस बॉडी के साथ हमारा सबका हिसाब किताब है, और ये जितना ज़्यादा हम सबको तड़पाता है उतने ही ज़्यादा हिसाब किताब चुकता भी होता है, क्योंकि हर जन्म में हर व्यक्ति को हमने दुख दिया होगा, पीड़ा पहुँचाए होंगे, दर्द पहुँचाए होंगे, तो ये आज यहाँ आकर के हम सबको ले रहा है। और इसीलिए दुनिया में तो जानबूझ के हिसाब किताब बना लेते हैं, जैसे कि कोई संप्रदाय ऐसे होते हैं उनका एक एक बाल पकड़ पकड़ के उखाड़ते हैं उनके, हाँ हिसाब किताब देखिए। तो फिर भी बाबा ने हम सबको तो इस प्रकार की देह की सजाए नहीं दिया है, बाहर से आती है हिसाब किताब बन के आती है, तो फिर भी ठीक है। तो इसीलिए हम सब इसको क्या समझेंगे, वैराग्य। और 18 में हमने निकाले थे यह सबको भ्रमित करने वाला माया जाल भी है, हाँ देह माया जाल। तो इस माया जाल में आज हम हर मनुष्य आत्मा फंसी हुई है। माया जाल माना जैसे कि समझ न पाना, इसका आदि क्या है अंत क्या है समझ में नहीं आता है मनुष्य आत्मा को, और इससे निकलना तो चाह करके भी दुनिया के कोई लोग निकल नहीं पाएंगे। लेकिन बाबा को, बाबा ने हम सबको बहुत इजी तरीके से बहुत सहज विधि से निकाला है, तो अभी भी फिर भी हम कई बार निकल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम सब इस वैराग्य की विधि के द्वारा स्मृतियों को तरोताजा करना, स्मृतियों को स्ट्रांग बनाना और बार बार रिपीट करते रहना, तो इसके कारण से भी हम सबको देह से लगाव कम होगी और देह से ज़्यादा फायदा हम ले सकेंगे। नहीं तो चिपके हुए होंगे तो देह से फायदा हम ले नहीं पाएंगे और आत्मा उड़ नहीं पाएगी, और आत्मा खजानों से संपन्न नहीं बन सकती है और सर्व अनुभवों से भरपूर भी नहीं हो सकती है। तो इसके बाद में ये भ्रष्टाचार से पैदा हुआ शरीर है, बाबा ने बोला ये भ्रष्टाचार की पैदाइश है, ये बड़ी विकारी शरीर है, ये भ्रष्टाचार से पैदाइश हुई है। तो ऐसे भ्रष्टाचार से पैदाइश हुई शरीर में इतनी लगाव इतनी झुकाव है ना, भाव बोला तो इससे थोड़ा सा इनको खिलाओ पिलाओ और देह में केंद्रित ना हो जाओ, आप आत्म केंद्रित हो जाओ। तो द्वापर से कलयुग तक सारे धर्म आज पूरे देह केंद्रित हुए, देह में ही फंसे आत्माएं, धर्म करते हैं तो भी देह में, कर्म करते हैं तो देह में, और जितने बड़ी त्याग तपस्या करते हैं उसमें भी देह में फंस जाते हैं। आगे जा करके कुछ सिद्धियां मिलती है तो सर्व प्राप्तियां होने लगती है, तो देह में के ही बंदोबस्त करने लगते हैं, माहौल माड़ियां बनाना, शहर में बसना है ना, अच्छे आश्रम बनाना, फिर सबके मान सम्मान प्राप्त करना, तालियों की गड़गड़ाहट सुनने की इच्छा सबको होती है, तो उसको कहते हैं कान की मदिरा, नशा चढ़ जाता है इंसान को। तो इसीलिए इधर भी तपस्या किया, इसीलिए यहाँ पर बाबा ने हम सबको वो शिक्षा दिया है कि पहले देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी का लास्ट निष्कर्ष है इच्छा मात्र में अविद्या, और सिद्धियां जो लोगों को प्राप्त होती है दुनिया में उस सिद्धि देवान से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सिद्धियां लगातार तपस्या साधना करने के बाद में मिल जाती है, लेकिन विदेही बनने का नॉलेज उनके पास में नहीं होता है, और वो सिद्धियां कुछ सालों के बाद में कुछ जन्मों के बाद में उनके आश्रम के ही सब है ना, आश्रम ही चौपट हो जाता है, आगे तो खींच ले जा नहीं सकते, क्योंकि विधि से सिद्धि होता बाबा ने बोला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा विधि से सिद्धि है, उनका रिद्धि सिद्धि है। तो इसीलिए आगे हमने निकाले थे कि ये देह जैसे कि बीमारियों का डेरा है, सर्व बीमारी इसी में पकड़ी हुई है, सर्व प्रकार की बीमारियां इसी में ही है। आज विश्व ब्रह्मांडों में सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और सारी दुनिया इसके ऊपर ही मदार है, आज करोड़ों लोगों का है ना रोजी रोटी इसी से चलती है, और कई प्रकार के डॉक्टर्स हैं आज तक, होम्योपैथिक एलोपैथिक पानीपैथिक आयुर्वेद से लेकर के सारी दुनिया। तो कभी हम हॉस्पिटल गए थे, वो घुटने का ऑपरेशन चल रहा था, सुशील भाई हम गए थे तो लाइव कर रहे थे ऊपर में, और चारों तरफ से लोग लगे हुए हैं, मुख में वो जो पहने हुए हैं जैसे कि ये डॉक्टर खाना है एंड थिएटर है, या ये जैसे कि है ना यामदूतपुरी है जैसे कि, कोई इधर चमड़ी खींच रहा है, कोई उधर काट रहा है, कोई खट खट का आवाज आ रहा है, कोई वो ड्रिल मशीन चल रही क्रू करके, ये सब हो क्या रहा है? और कोई इतने बड़े जो ठोक रहे उस पर खिली, हाँ कारपेंट्री की तरह काम चल रही है वहां पर, सब लगे हुए हैं, अब बड़े बड़े मुख ढाक करके लगे हुए हैं, जैसे कि यमदूतपुरी है ये है ना, धर्मराजपुरी तो वो जो कोई मेंटली प्रॉब्लम था तो सब लोग मेंटल प्रॉब्लम था, और उसने तहलका मचा के रहा उस थिएटर माना वो पीढ़ी माना उसमें, तो वो फिर भागते हुए निकल के गए उस वहाँ पहुँचते, वो पागल जो पेशेंट था ना, यमदूत आ गया यमदूत, उनको देख करके उसने इस प्रकार के है ना संबोधन किया था। तो इसका मतलब ये देह को हम क्या समझेंगे, बीमारियों का डर। तो आगे हमने निकाले थे ये देह है ना सर्व विकारों का कारण है, सर्व दुखों का कारण है, कर्म इंद्रियों का आकर्षण ही सर्व दुखों का कारण है, तो देह का आकर्षण ही सर्व दुखों का कारण है। तो ये देह में जितनी ज्यादा आकर्षण होती है और इसमें जितना हम फंसे रहते हैं संकल्पों से, स्मृति से, बोल से, नस नस में देह समाया हुआ है, देह की स्मृति समाई हुई है। तो आज हम सब तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, हम सब बता सकते हैं कि देहवान कहाँ है? देहवान कहाँ होता है? एक तो इसका सीधा कनेक्शन है ना चित्त में रहता है, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन बुद्धि में रहती है, और बुद्धि ही उसका प्रतिनिधित्व करता रहता है, और जो जितना लंबा है चौड़ा है उसका फीट नाप करके उसी का ही वो सारे दिन चिंतन करना, उठना बैठना, और उसी के आधार से ही वो चलती रहती आत्मा, और देहवान बुद्धि में समाई हुई है। और आज हम ये बुद्धि के अंदर जो भी चीजें हैं उसको डिलीट करके आत्मस्वरूप को भरने के लिए अमृत वेले से लगे रहते हैं। जब तक आत्मा की स्मृतियां बुद्धि की गहराई में नहीं उतरती है तब तक देहवान अप डाउन चलती रहती है, कभी देहवान आवी होता है, कभी देही स्थिति आवी होती है। तो ब्राह्मण के जीवन में हर दिन इसका उताप चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन आगे जा करके एक अवस्था जब हो जाएगी तो फिर देह उतना ज्यादा हमें आकर्षित नहीं कर सकती है। तो आगे हमने निकाले थे ये देह पिंजड़ा है, तो पिंजड़ा अर्थात पंछी फंसी हुई है, विश्व ब्रह्मांड में सभी आत्माएं है ना देह रूपी पिंजड़ा में फंसी हुई है, और उड़ना तो सब चाहती है आत्माएं, लेकिन सबकी नसीब में सबकी किस्मत में ये नहीं, तो ये नसीब और ये किस्मत ब्राह्मण को मिली हुई है, इसीलिए हम सब अपने को ये पिंजड़ा है और हम इसमें बैठे हुए हैं। तो बीच बीच में ये चेक करना है कि पिंजड़े में पूरा फंस तो नहीं गई हूँ, उड़ना चाहती हूँ तो उठ पाती हूँ या नहीं उठ पाती हूँ। तो इस तरीके से हमने जितने भी पॉइंट निकाले थे, तो आप सबके साथ आप सबके आगे जितना कितना हो सके कि जितना हो सके इस संकल्पों को रख करके तो इस तरीके से देह रूपी डाली को आत्मा पंछी पकड़ के रखती है, और ये अब हो गया सांप का तो खबर सांप तो इसीलिए सारा दिन भर हम उस दिन जो सचिन डॉक्टर ने कराए थे उसके साथ में इसको भी ऐड करके बीच बीच में स्मृति में लाते रहेंगे। तो तो इसीलिए आप सबके है ना साथ में हमने भी जो बातें हो सकी आप सबके साथ शेयर किया। इतने में ओम शांति ओम।
झाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले रे जैसे घासा, हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा रे, हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियां, केस जले जैसे घासा, कंचन जैसी काया जल गई हो, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना ए पासा, हे कोई ना ए पासा। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तेरी आरो वै तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी आरो वै तेरा दिना तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोवे, जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे करके आस पराई, हे करके आस पराई। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना,
हे माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना रे,
माटी ओढ़ना माटी बिछौना माटी का सिरहाना। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, हो
कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, ये जग आना जाना,
हे ये जग आना जाना। क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना।